शांति। साकार मम्मा बाबा की पालना, जिनकी रग रग में समाई है ऐसी विरल हस्ती, महान तपस्वी योगी, ज्ञान रत्नों की खान, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब हम सबके बीच में है। हम सभी दिल की गहराइयों से भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप 1955 में अपने पूरे परिवार समेत संस्था के संपर्क में आए, तब आप अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से आपने लौकिक अलौकिक जीवन का बैलेंस रखा। 1956 में लॉ की पढ़ाई और सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन नंगल में एज अ फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्य करना शुरू किया और उन्हीं दिनों चंडीगढ़ की सेवाओं में भी आपका विशेष पाठ बाबा ने रखा। आप संस्था के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, ब्रह्मा कुमारीज के पॉलिटिशियन विंग के आप चेयरपर्सन हैं, आप पूरा फिनेंस डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, दिल वालों की दिल्ली जोन की सेवाओं के भी आप उत्तरदायी हैं। ज्ञान के बहुत गहरे गहरे रहस्यों को बहुत रमणीकता से और सहज रूप से स्पष्ट करने में आपकी विशेष कला है। आप देश विदेश में अनेक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मानव सेवा के लिए आपने आध्यात्मिकता की अलख जगाई है। क्योंकि आपका लौकिक और अलौकिक जन्म पंजाब से हुआ, आपके प्रोफेशनल और ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत भी पंजाब से हुई, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि पंजाब वालों का आप पर विशेष अधिकार है। और आज विशेष इकॉनमी और एक नामी, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब।
ओम शांति। अगर किसी को बीज मिल जाए अर्थात उसको सारा वृक्ष मिल जाता है। बीज बहुत छोटा होता है लेकिन सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। हम सब सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं अब तक हुई हैं, सतयुग से लेकर देवी देवताओं से लेकर धर्म स्थापकों तक, ऋषि मुनियों तक, फिर नीचे आ जाओ तो साइंस वालों तक, डॉक्टरों तक, चाहे वो नेता हैं, धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, जितनी भी आत्माएं हुई हैं, वो सब रचना है और उनको रचयिता का पता नहीं है। केवल और केवल संगम युग पर खुद रचयिता ने ढूंढ ढूंढ कर अपने बच्चों को निकाल के इकट्ठा किया और वो कहां बैठे हैं? डायमंड युग में, डायमंड स्वरूप में, डायमंड हॉल में बैठे हैं। तो सारा शुक्रिया किसको जाता है? डायमंड बनाने वाले बीज को। तो इसलिए आज हमारा विषय यह है कि उस एक का इतना शुक्रिया अदा करें, इतना शुक्रिया अदा करें, इतना शुक्रिया अदा करें कि फिर भी जो कुछ उसने हमें दिया है हम अदा नहीं कर पाएंगे, फिर भी इकट्ठे मिलकर के करेंगे, कुछ तो पहुंचेगा ही। इसलिए कहा गया है एक नामी। अब एक नामी में सब कुछ आ जाता है। वो कौन सा एक? जो सचमुच हमारी सब इच्छाएं, तो क्या इच्छाएं पूरी करके अपनी तरफ से हमें ऊंचे से ऊंचा बना रहा है। मैं आपको कह दूं, नया साल मुबारक हो, है जी, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो। लेकिन मुबारक हो, अब पता नहीं होता है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि विश है। तो विश मैंने इच्छा, चाहना। तो वो कौन है जो सचमुच गारंटी कर दे कि विश वुश नहीं, आपका तो नए साल का एक एक दिन मुबारक, और पहली जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक और बढ़ोतरी बढ़ोतरी है, ये कौन कर सकता है? दुनिया में लोग क्या चाहते हैं? नए साल में हर चीज नई चाहते हैं, ठीक है ना। पहली बात, चाहते कितनी भी नई हो पर पुरानी पीछा छोड़े तब तो हम नए बने। पुरानी चीज पीछा छोड़ती है आपका? कहते हैं कि गंगा नदी बह रही थी और उसमें कंबल बहता हुआ जा रहा था, तो एक लालची आदमी था, उसने छलांग लगाई कि मैं कंबल को पकड़ लूं। तो वो था रीछ, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, अब उसका दोस्त बोले भी आजा कंबल लेके वापस, नहीं तो छोड़। कहता है मैं तो कंबल को छोड़ता हूं पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। इसी प्रकार से हम कितना भी नया बनना चाहें, पुरानी चीज तो पुरानी रहेगी। तो हमारे को बाबा ने समझा दिया कि 63 जन्मों के दो पुराने युगों के जो पुराने से पुराने होने हैं और आगे जाओगे और पुराने होने हैं, उसका उदार हमारे सिर पर है। तो जिसका उधार हमने देना है वो हमें छोड़ेगा? चाहे बच्चे आपके पकड़े, कोई पकड़े, नहीं तो अपना आप शरीर ही आपको पकड़े। इसलिए वो कौन है जो सचमुच हमको पुराने से छुड़ाकर, ऐसे भी नहीं पुराने से छुड़ाकर, नए से भरपूर करके और हर प्रकार से इतना भरपूर करके कि आपको दो युग कुछ करना ही ना पड़े, स्वर्ग मैंने स्वर्ग मौज करना है, वो कौन है? और जिसमें शक्ति है करने की, सर्वशक्तिवान है, इसलिए हम कहते हैं एक नामी में सब कुछ आ जाता है। क्यों? एक तो वो सच्चा है, सत्य है, तो सच्चा जो होगा वो दूसरे को भी सच्चाई बनाएगा। और हम कहां पड़े हैं? झूठी दुनिया में। आज लोग हंसते तो हैं, हंसी झूठी या मिक्स, मुस्कुराते हैं वो भी नकली। फोटोग्राफर आता है कहता है जी मुस्कुराओ, आपका फोटो लेना। इसका मतलब क्या हुआ? ये उससे पहले हम मुस्कुरा नहीं रहे थे, फोटो लेने के बाद भी हम नॉर्मल हो जाएंगे, फोटो लेना इसलिए मुस्कुराओ, झूठी। अच्छा, दिखावा। आप जानते हैं इस दुनिया का क्या वर्णन करेंगे तो आपको पता ही है। अब वो कहता है वो कौन है जो सर्वशक्तिवान है? दुनिया में कोई आपको मिला? वो कौन है जो तीनों कालों को जानता है, हमारा भविष्य भी जानता है, हमारा पीछा भी जानता है, आगे भी जानता है? वो कौन है जो सबसे सुंदर है? जो दुनिया में मनुष्य क्या कहते हैं, मैं सदा हेल्दी रहूं, सदा हेल्दी रहूं, सदा हैप्पी रहूं, मेरी आयु भी पूरी हो और मैं सुंदर भी हूं, तो सब कुछ बनाने वाला वो है। और हमको उसने चुना है। लोग भगवान के पीछे जाते ढूंढते हैं और बाबा कहता है मैंने आप बच्चों को एक एक को चुना है, अपनी आज की सूरत नहीं देखो, ना अपने दूसरे ब्राह्मण की आज की सूरत देखो, चुने किस लिए है? अस्पताल में कौन जाता है? मरीज ही जाएंगे ना। तो बाबा ने चुन चुन के उन बच्चों को, सारे इस लायक नहीं है जो के कभी थे और आज ये हो गए हैं, उसको बाबा ने चुना कि मैंने तो आप चाहो ना चाहो, चाहे क्लास में सोते रहो, चाहे मजबूरी से क्लास में आओ, कुछ भी करो, चाहे दिखावा करो, पर मैंने आपको, क्या कहते हैं पंजाबी में तो दूसरे को कहते तुझे बंदा बना दूंगा, तो मैंने आपको देवता बना के छोड़ना है। दुनिया में तो बंदे भी नहीं है। अच्छा, अब आप सोचो एक पिता है, उसके कोई संतान नहीं है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी है, सारी दुनिया को दे सकता है। अब वो क्या ढूंढेगा? वो कहेगा कोई मिल जाए, किसी को मैं गोद का बच्चा ही बना लूं, उसको मैं कम से कम मेरी जायदाद तो संभाल ले। क्यों? कि जिसके पास जो चीज होती है देने के लिए वो अपने लिए नहीं होती। अब मान लो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हर चीज की उसके पास शक्ति है, लेकिन उसकी सर्वशक्ति उसके अपने लिए है या दूसरों के लिए है? सोच के बताओ। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसकी जो सर्वशक्ति है किसके लिए है? उसके अपने लिए है या दूसरों के लिए है? हमारे लिए है। ये बात खास नोट करने की है। सूरज के पास इतनी रोशनी है, सारी दुनिया दिन चढ़ जाता है। सूरज के पास इतनी ऊर्जा यानी गर्मी है, शक्ति है किसके लिए है? क्या सूरज खुद यूज करता है या दूसरों को देता है? क्यों जी, खुद सूरज खुद यूज करता है या दूसरों को देता है? अपने लिए तो नहीं है। अच्छा, पेड़ में अनेक फल लगे हुए हैं, आम लदे हुए, आम से भरा हुआ, पके हुए, खुशबूदार रंगदार आम लगे हुए हैं, किसके लिए हैं? आम पेड़ खाएगा या दूसरे खाएंगे? हमारे तो कहावत है, नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते। तो कोई भी चीज जिसके पास है अपने लिए नहीं है। ये कुर्सी आराम देती है, अपने को नहीं देती, दूसरे को देती है। इसलिए भगवान कहता है कि मेरे को तो इतनी मेरी जायदाद, सारी दुनिया को मैं स्वर्ग में भेज सकता हूं, और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इम्तिहान आ जाए तो भगवान जी पास कर देना, मुकदमा हो जाए तो भगवान जी जिता देना, ट्रेन ना मिले तो ट्रेन दिलवा देना, तो सीट दिलवा देना, ये हम कर रहे हैं भगवान के बच्चे। इसलिए उसको तरस आता है, वो भी भारतवासी जो जिनके पास मूर्तियां हैं, यादगार हैं कि कभी तुम क्या थे, और अपनी मूर्तियों को यादगार को देखने के लिए, जैसे मुरली में कहा है कि तुम नहाकर धोकर साफ कपड़े पहनकर दर्शन करने जाते हो अपने पूर्वजों के। अब सवाल ये है, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर बनूं और सुंदर रहूं, मैं सदा धनवान रहूं, सदा आयुष्मान रहूं, तो स्वर्ग में तो थे, इसलिए तो कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्गवास हो गया, और अब स्वर्ग का टाइम आ गया है और स्वर्ग बनाने वाला भी आ गया है। अब आप सोचो कि जिस एक से ही सब कुछ किसी को मिल सके, सब कुछ, और घर बैठे, वो कहता आपको जाने की भी जरूरत नहीं, मैं परम धाम से, बाप है, तरस पड़ता है, इतनी दूर से रोज आपके घर आके आपको पढ़ाता हूं, और आप पढ़ते नहीं हो, नखरे करते, तो लाड प्यार करके पढ़ाता हूं, नहीं नहीं बच्चा थोड़ा पढ़ ले, ऐसा बाप किसी ने देखा? और है क्या हमको जी देवता बनाना है। अब आप सोचो कि आप मन में जिसका ध्यान करोगे उसी की चीज आपके मन में आएगी। आप अगर किसी अपने मित्र का ध्यान करोगे तो मित्र मन में आएगा, ठीक है? आप गरम गरम हलवे का ध्यान करोगे तो हलवा मन में आएगा, ठीक है? आप बढ़िया वस्त्रों का जो ध्यान करोगे वो मन में आएगा। अच्छा, अब वो कहता है मुझे मेरे में ध्यान लगा लो तो जो कुछ आपको चाहिए सदा के लिए आपके मन में आएगा। तो हमें ध्यान उसका करना चाहिए या तंग करने वाली चीजों का करना चाहिए? हाय ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, ये करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा एक नामी, एक में सब कुछ आ जाता है। और हम भक्ति में गाते रहे हैं, क्या गाते रहे? तुम माता पिता बंधु सखा सब तुम ही हो, गाते रहे कि नहीं गाते रहे? अच्छा, हमें सद्बुद्धि दे दे, हमारे विकार खत्म कर दे, जो हमको चाहिए उसको याद करते रहे। अब मम्मा की मुरली आपने सुनी, एक छोटी सी मुरली है लेकिन उसके अंदर एक लाइन को पकड़कर मम्मा ने इस शानदार तरीके से सारे ज्ञान को सिद्ध किया है जो कोई नहीं कर सकता सिवाय सरस्वती मम्मा के। आप सोचिए कि हमारे बड़े टीचर तो हैं ही, सरस्वती जिसको नाम दिया गया, एक लाइन पकड़ के मम्मा ने पूरे का पूरा आगा पीछा हमको समझा दिया। तो रोज जो बाबा हमको टिकलू टिकलू करता है कि बच्चे, तो ब्राह्मण कितने खुश हैं कि हम सबको बाबा ने क्या से क्या बना दिया। आप यहां आके देखो जरा, सुबह के वक्त अमृत वेले देखो, दुनिया के लोग खराटे भर रहे होते हैं, यहां ब्राह्मण बाबा से शक्ति लेकर गुण लेकर के निकल रहे होते हैं। एक मेरे पास साइकिल वाला आता है कॉलोनी से, कहता है जी मेरे को साइकिल निकालने की जगह नहीं मिलती। उस वक्त क्या बाबा ने रचा है, ये तो एक जोन है, अगर सारे वर्ल्ड के बीके कहीं दिख जाए किसी को तो क्या कहेगा, अभी हाथ जोड़ के सरेंडर कर देगा। क्यों? बाबा ने वो चीज दे दी है जो दुनिया को मिल ही नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती। इसलिए फिर वही बात आ जाती एक नामी। अब हमें क्या जरूरत है कि एक नामी से हट करके और चीज की तरफ ध्यान दे। किसी को हीरा मिल जाए और वो कौटियों को ढूंढता फिरे तो क्या कहेंगे, इसको हीरे की बेचारे को परख नहीं है, या इसका स्वभाव है पुराना। बाबा कहता परख तो है पर पुराना स्वभाव होता है ना, वो जाता नहीं। आपको पता है कि एक राजा था, वो जंगल में गया, उसने देखा एक बहुत सुंदर मनुष्य का बच्चा ऐसे ही जानवरों के बीच में पड़ा है। उसने अपने आदमियों को कहा इसको ले आओ। मनुष्य का बच्चा था पर वो भाषा भी जानवरों जैसी बोल रहा था, चल भी जानवरों की तरह रहा था, बहुत समय से जानवरों के साथ रहता था। पर उसके बाजू में ठप्पा लगा हुआ था राजकुमार का, क्योंकि पहले वक्त में राजकुमार को कोई बदल ना ले वो एक ठप्पा लगा देते थे। धीरे धीरे राजा ने उसको ठीक किया। उसको पहले दिन उसने कहा राजकुमार, उसको पलंग पे सुलाया, वो तड़पे, धरती पे लेटाया तो खुश, क्योंकि उसको धरती पे लेटना आता था। तो इसी प्रकार से हमको पुराने मेन प्रॉब्लम क्या है, भगवान तो अथाह दे रहा है, हम लेने को भी तैयार हैं, इच्छा भी रखते हैं। कौन होगा जो कहे कि मैं सज्जू की बादशाही न ले लूं? हाथ उठाएंगे? त्रेता के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। अच्छा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भरे हुए गिलास में आप और क्या डाल सकते हैं? पहले खाली करोगे तो भरेगा। जैसे रेलवे में होता है, सवारियां उतरने को भी जोर लगाती है, चढ़ने को भी जोर लगाती है, गेट पे अड़ जाती है, ना वो चढ़ पाते ना वो उतर पाते। इसलिए पहले उतारोगे तो जगह बनेगी। तो जब हमारे ऊपर 21 जन्मों का बोझ है तो भगवान कहता है उसका भी मैं प्रबंध कर देता हूं, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका उधार भी चुकतू कर दे और आपको माला माल कर दे। 63 जन्मों का बोझ, आप सोचो 63 जन्मों का बोझ हमें दिखता नहीं। ये जो हमें उदासी आ जाती है, अचानक मूड बिगड़ जाता है, मुरली में मजा नहीं आता है, अब किसी को बदहजमी हो उसको कहो खीर खा ले, उसको खीर अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि बदहजमी है। इसलिए भगवान कहता है कि एक होती है डायबिटीज, डायबिटीज मैंने वो बीमारी जिसमें शुगर से बचा जाता है, एक होती है स्पिरिचुअल डायबिटीज। तो ब्राह्मणों को कौन सी डायबिटीज होती है? स्पिरिचुअल, चाहे वो यंग एज के हों। स्पिरिचुअल डायबिटीज का क्या मतलब है? बाबा मुरली शुरू करता है मीठे मीठे, ठीक है, मीठे मीठे, उसको स्पिरिचुअल डायबिटीज है। तो क्या बाबा कहेगा मीठे मीठे, उसके अंदर ही नहीं जाएगा मीठे मीठे, क्या किया जाए? भगवान खुद कह रहा है मीठे मीठे पर उसके अंदर ही नहीं जा रहा। क्यों? स्वभाव बिगड़ा हुआ, जिसने उसके लिए भी ईर्ष्या करनी है, उसके लिए भी बुरा सोचना है, उसकी भी गलतियां देखनी है जी, उसको मीठा अंदर कैसे जाएगा? तो गुण होंगे तो मीठा जाएगा, इसलिए भगवान कहता है यहीं अड़ जाता है। जैसे ट्रेन के गेट पे अड़ जाते हैं ना, अड़ जाता है, भगवान कहता है मीठे, और खुद भी बेचारा परेशान है। बाबा मुरली में कहता है ये गुण धारण करो, और कुछ ना सही, सबके लिए शुभ भावना रखो, ठीक है। तो मुरली सुनते हैं त्रेता युग वाले क्या करते हैं, फिर शुभ भावना अंदर चल जोर से कहते हैं, यहां अड़ जाती शुभ भावना। अच्छा, अहंकार बाहर आ, तो वो अहंकार बाहर नहीं आता, शुभ भावना अंदर नहीं जाती, अड़े हुए हैं। कि शुभ भावना कैसे जाएगी जब अहंकार बाहर नहीं आएगा? इसलिए बाबा कहता है कि ये इससे टेंशन हो जाता है ब्राह्मणों को, कि मैं चाहता हूं अंदर चल, वो बाहर आ, ना वो बाहर आता ना वो अंदर जाता, मैं क्या करूं। इसको कहा जाता है युद्ध करने वाले योद्धा, त्रेता युग के क्षत्रिय। तो बाबा कहता है चेक करो। क्या चेक करो? कि कभी कभी मुझे जोश तो नहीं आता। एक होता कभी कभी का जोश, वो क्या होता है, मान लो अव्यक्त बाप दादा शाम को आएंगे, हम एक तो कागज पे मुरली पर सुन लेते हैं, आजकल और तरीके से सुन लेते हैं, जब अव्यक्त बाप दादा सामने सुनाएगा तो अच्छी तरह ख्याल आएगा, बाबा कहेगा बच्चे मैं छोड़ी। अच्छा, टाइम ऐसा है, मैं देख रहा हूं कई सो रहे हैं, सोने देना उनको, अच्छा लग रहा है, रात को सोए नहीं होंगे, अच्छी बात है, साथ वाला जगाड़ा नहीं भाई किसी को अपने साथ देखे। अच्छा, अब देखो ये चीज ही ऐसी है, मुरली से नींद तो आई जाती है, बड़ी सबसे ज्यादा मस्ती नींद कब आती है, क्लास में नींद आती है, योग में तो बहुत अच्छी आती है, वो समझते हम अति इंद्रिय सुख में चले गए, जब गर्दन दूसरे के ऊपर लटकती तब पता लगता है कि कहीं और गए हुए हैं। अच्छा, मुरली में भी आ जाती है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि जब कुंभकर्ण मारा गया था तो उसकी पत्नी का नाम था निंद्रा देवी, तो निंद्रा देवी विधवा हो गई। अब निंद्रा देवी विधवा हो गई, वो तो रावण की नगरी में रहती थी, बहुत फैशनेबल थी, रात को क्लब में जाती थी, अब वो विधवा हो गई, तो उन्होंने कहा खबरदार सफेद कपड़े पहन ले और घर में रहना विधवा की तरह। वो बेचारी 6 महीने में उदास हो गई बिल्कुल, कि मेरा तो सब सिस्टम बंद हो गया। फिर पंचायत बैठी कि इसका कुछ करो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये सत्संग में जा सकती है। अच्छा अच्छा, अब बेचारी को सत्संग में जाना अलाउड है, तो आ जाती है, तो आपको पता तो लगता नहीं भी कौन करवा रहा है, ये तो निंद्रा देवी करवा रही है अपना काम। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाबा कहता है ये देखो कि बीच बीच में मुझे जोश आए, अरे बाबा ऐसे कह रहा है, टाइम थोड़ा जल्दी कर, तो हमने तीर कमान उठा लिया, तो समझो त्रेता वाले हैं, क्योंकि कोई चीज भी जो जोश के वश में की जाए, खास अटेंशन करवा के की जाए, जैसे हमारे भारत में भक्ति में दिन त्योहार आ जाता है, उस दिन फाका भी रख लेते हैं, आजकल तो उसका भी रूप बदल देते हैं, दूसरा अनाज खा लेते हैं, आजकल तीर्थ भी करे आते हैं, दान भी कर देते हैं, वो एक दिन का जोश है, जैसे एक दिन का नया साल आएगा, तो बाबा कहता है मैं इसलिए नया साल नहीं बनाता, नई दुनिया बनाता हूं, क्योंकि वो आ गए उसमें तो चलेगी चलेगी, फिर आपको प्राणा नहीं आ सकता, इसलिए जो कुछ करना है उसको अपना नेचुरल स्वभाव बनाए। कभी भी टाइट होके सख्त होके कोई काम करोगे तो वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, बल्कि उसके बाद आपको और डिप्रेशन आएगा कि भाई मैं आज नहा दो के सुबह मुझे डायमंड हॉल में जाना है तो मैं 3 बजे ही नहा के अच्छी तरह आके बैठ जाऊं, उसके बाद क्या होगा, डायमंड हॉल से जाके 2 घंटे सो जाएंगे भी मैं तो जाग गया था, तो ऐसे नहीं होने वाला है। तो नेचुरल स्वभाव, नेचुरल स्वभाव में क्या आता है, धैर्यता। आपने देखा देवता कैसे चलते हैं, रामलीला देखी है ना, तो रामलीला में राम को कैसे चलता हुआ दिखाते हैं, वो बड़े स्टाइल से चलता है, कहने का मतलब तेज नहीं चलता, कोई भी देवता तेज नहीं चलता, हमारी दादियां कभी तेज नहीं चलती। मुझे अच्छी तरह याद है बहुत साल पहले मम्मा दिल्ली आई थी, बहुत साल पहले थोड़े से स्टूडेंट होते थे, तो रेलवे स्टेशन पर 2 लाइन बना के 20-25 बहन भाई मम्मा से दृष्टि ले रहे थे, और उधर ट्रेन जो थी मम्मा का डब्बा दूर था तो ट्रेन ने सीटी दे दी, तो मैंने देखा मम्मा ने दृष्टि देने में की स्पीड तेज नहीं की कि भी जल्दी जल्दी करो मेरी गड्डी जाने वाली है, उसी तरह देती रही। फिर गार्ड ने झंडी दिखा दी और ट्रेन ने दूसरी सीटी दे दी, हमने कहा मम्मा, फिर भी मम्मा ने अपनी वही स्पीड रखी। अच्छा, जब सबको दृष्टि दे दी मम्मा ने डब्बे तक जाना था तो भी मम्मा ने तेज स्पीड नहीं की, उसी स्पीड पे डब्बे पर गई जिस पे वो बैठी थी, और गाड़ी तब चली जब मम्मा बैठ गई। यहां भी आप अव्यक्त बाबा दादा को देखते थे, इसको कहते काल जीत, यहां भी आप अव्यक्त बाबा दादा को देखते थे, लाइन लगती थी, गाइड भले कहे जल्दी कर पर अव्यक्त बाबा दादा ने कभी जल्दी नहीं की, एक से दूसरे को बताने में चाहे 100 बंदा खड़ा हो 100वें को भी उसी स्पीड पे देगा, इसको कहते धैर्यता। धैर्यता को कहते सबर, और सबर का फल मीठा होता है। तो अर्थात अगर हमने बोलने में तेजी कर दी, चलने में तेजी कर दी, सोचने में तेजी कर दी, तो समझो कि गड़बड़ है, ये कलयुगी सिस्टम है। इसलिए धैर्यता का मतलब है जिस ड्रामा को हम जानते हैं, अगर ट्रेन ने मिस होना होगा तो होगी, नहीं होना तो कभी नहीं होगी। पंजाब में एक लाला जगत नारायण होते थे, अखबार के एडिटर जलंधर में, माउंट आबू आए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी उनका ध्यान रखना, तो उनको मैंने स्टेशन पर छोड़ने भी जाना था। उन दिनों यज्ञ में कारें वारें नहीं होती थी, एक टैक्सी होती थी, ब्रह्मा बाबा भी टैक्सी में ही जाते थे। उसको बुलाया गया तो लाला जी बार बार घड़ी देखें, मैंने कहा लाला जी कोई नहीं आप चढ़ जाओगे ट्रेन में, कहे अच्छा देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। फिर मैंने उस ड्राइवर को कहा इनको बताओ कि तुम कितने साल से यहां हो, किसी की ट्रेन मिस हुई? उसने कहा जी नहीं हुई। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ड्रामा को एक्यूरेट मानते हैं, मिस होने में भी कल्याण हो सकता है, क्या पता ट्रेन को आगे कुछ हो जाए। इसलिए धैर्यता, तो जो धैर्यता तब हो सकती है अगर हम नेचुरल रहे। मान लो अगर किसी दिन आप कोई चीज मिस कर रहे हो तो आप उससे परेशान हो गए कि ओहो, ऐसे धक्का मार के, जैसे आजकल लोग बूढ़ी माता को भी धक्का मार के बस में चढ़ जाते हैं, वो धैर्यता नहीं है। तो देवी देवताओं का चाल क्या है, वैसे का वैसे ही नेचुरल रहना। तो आपने ये देखना है अगर हमने सतयुग में आना, सूर्य वंश में, तो हमें हर चीज नेचुरल करनी चाहिए। और अगर हमने कभी तेज कभी स्लो किया तो बाबा कहते हैं जैसे किसी का बीपी हाई हो जाए लो हो जाए, या कोई प्लेन कभी नीचे आ जाए कभी ऊपर, वो हेल्थ की निशानी नहीं है। तो कहने का भाव क्या हुआ, एक नामी बनने से क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वो आपको शक्ति भी दे सकता है, आपको गुण भी दे सकता है, ज्ञान भी दे सकता है। इसलिए एक बाबा को पकड़ लो तो बेड़ा पार है। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप जड़ में पानी दोगे तो सब जगह पहुंच जाएगा, चाहे एक गिलास पानी हो सबको पहुंचेगा। तो इसलिए एक नामी के बाद जो लास्ट शब्द आता है वो है इकोनॉमी। वैसे उसमें पांच शब्द हैं। एक नामी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एकाग्र। अच्छा, एकाग्रता भी अचानक आप कहें आज मैं एकाग्र हो जाऊं तो बड़ी मेहनत लगती है। इधर से संकल्प समेट, इधर से समेट। आजकल एकाग्र व्यक्ति तब होता है जब बहुत मजबूरी हो, नॉर्मल एकाग्र रहता ही नहीं, या बहुत लोभ हो पर कोई फायदे की चीज हो तब। सदा एकाग्र, फिर उसके लिए क्या कहते हैं? एकांत। एकांत का ये मतलब नहीं मैं अकेला जाके अपने कमरे में बैठ जाऊं, सारी सभा के अंदर बैठे हुए मैं अपने आप से अपना मतलब रखूं, इसको कहते हैं एकांत। मुझे कोई चीज डिस्टर्ब ना करे। वो तब हो सकता है अगर आपका ध्यान एक ही तरफ हो, फिर आपके आले द्वाले का पता नहीं लगेगा। उसके लिए चाहिए प्रेम। अगर परमात्मा से अति प्रेम है तो आपको ना ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना फील होगा, नेचुरल प्रेम आपको चलाएगा। एक बार हम मम्मा को लेने रिवाड़ी गए थे, मम्मा की ट्रेन आनी थी, मैं और मेरा भाई था। रात के 2:30 बजे हम पहुंच गए दिल्ली से ट्रेन लेकर। इतना मोटी पानी की धार थी, ठंडा पानी था। हमने स्नान कर लिया, हमें पता ही नहीं लगा कि ठंडा पानी है या धार है, क्योंकि मम्मा आ रही है। इसलिए आप देखोगे जब आपको कोई लगन होगी आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए एकांत का ये मतलब नहीं है, इसके गहरा मतलब है एक के अंत में रहना, उसको ध्यान में रखना, तो पता ही नहीं लगेगा भगवान है। फिर एक रस कहते हैं। अब एक रस मैंने एक रस स्थिति, एक रस का ये भी मतलब नहीं कि आप ढीले की स्थिति एक रस रखो। चढ़ती कला में एक रस रहो, वो तब हो सकता है। अब एक से ही सभी रस लेंगे, नहीं तो खट्टा मीठा करेंगे तो फिर दुनिया में भी अच्छा नहीं लगता। अभी खीर खा लिए, अभी गोलगप्पे खा लिए, आजकल तो लोग करते हैं, फ्री में मिलता है ना, पार्टी में जाते हैं, खीर खा लो, गोलगप्पे खा लो, चाय पी लो, आइसक्रीम खा लो, आज मनुष्य यही कर रहा है। तो एक रस, और तब जाके आती है लास्ट जो हमारा आज का विषय इकोनॉमी। अब अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरा श्वास, मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरी हर चीज, जरा सी चीज भी भगवान हीरे में बदल सकता है। आपके अखबार की रद्दी को भी भगवान हीरे में बदल सकता। हम तो सोचते थे रद्दी है, लेकिन रद्दी बेचकर, भारत का वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बताया था कि मेरी माँ ने रद्दी बेचकर मुझे पढ़ाया, तो रद्दी भी काम आ जाती। तो भगवान कहते मैं तो तुम्हारा हर चीज सफल करता हूं। तो जब ऐसा मौका हो तो फिर व्यक्ति को अपने इकोनॉमी हर चीज की इधर से करूंगा तो बाबा के काम में लगेगी। पहली बात तो यह है समय की और संकल्प की इकोनॉमी। संकल्प से ही समय बनता है, संकल्प 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 समय बनता है, समय से हमारी आयु बनती है। बाबा ने कहा आप सोचो संगम युग कितना बड़ा है, एक जन्म से भी कम, और उसमें हमें प्राप्ति कितनी है। कर्मों की गति तो कहती है ये कर्म कर ये फल पा, ये कर्म कर ये फल पा। कितना का फल आप कर्मों से पालोगे? एक गोभी का बीज बो एक गोभी उगेगी छुट्टी, एक पत्ता गोभी बो एक पत्ता गोभी उगेगी, एक कर्म का एक फल। मटर बोएंगे तो एक मटर बोएंगे बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सीजन खत्म। सेब बोएंगे एक सेब बोएंगे तो सालों साल चलेगा, फिर भी खत्म। ऐसा कोई कर्म है जो संगम की तरह करो तो आपको दो युग तक उसकी प्राप्ति हो, वो भगवान हमसे करवाता है स्पिरिचुअल। क्यों? कि ये कर्म ईश्वरीय कर्म है। पहला कर्म के हम आत्मा है, ये दुनिया सारी घूमे और किसी को पता नहीं हम आत्मा है, देवताओं को भी पता नहीं। तो आत्मा में आप अविनाशी हो, कभी खत्म नहीं होते, ना आपकी मृत्यु होती है, कितनी बड़ी ज्ञान है उसमें, आप सब कुछ भर सकते हो। ये दूसरा कदम, और भर भी सकते हो, दूसरे से भी भरवा सकते हो। देवता जो बन गए बन गए, आपको मौका है आप दूसरे को बना के जितने को बना लोगे उसका भी शेयर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कर्म ज्ञान मार्ग में किसी को लाना, जो बाबा कहता है सेवा और खुद धारणा करना, इसका फल है। जरा सा करो तो पद्मा पदम बाबा कहते हैं, उसके आगे तो गिनती नहीं होती, इतनी आपकी कमाई हो रही है। बाबा ने समझाया भी है कि एक के साथ जीरो लगाओ फिर जीरो लगाओ, ऐसे आपकी कमाई होती है। बाबा कहा पदम बन गए, कदमों में पदम। तब बाबा कहता है फॉलोअर, हम गुरु के चेले की तरह फॉलोअर नहीं है, पर बाबा को फॉलो करते हैं अर्थात बाबा के साथ कनेक्ट रखते हैं, इतनी जबरदस्त कमाई हमारी हो रही है। उसमें कौन होगा जो इकोनॉमी नहीं करेगा? फिर भी हमने देखा है कि बहुत जल्दी सहज किसी को मिल जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती, या व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, या व्यक्ति दूसरे को देखता है इससे तो मैं अच्छा हूं। मान लो आप पंजाब से आए हैं, आप पंजाब के सब भाई बहनों में मिलकर अपने को देखेंगे, मैं कहां हूं इसमें। वो भी जब इकट्ठा संगठन होगा तो सारे पंजाब का देखेंगे, नहीं तो अपने सेंटर का ही देखेंगे, जिनसे तो मैं अच्छा हूं। अब बाबा कहता है हमको सारी दुनिया के ब्राह्मणों में से, आप जाके ऑस्ट्रेलिया में देखो, न्यूजीलैंड में देखो, इतनी ठंड पड़ती है उनको भाषा भी नहीं आती, वो कैसे हर नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो उनको भगवान नंबर देगा कि नहीं देगा, या हमें देगा, घर में भगवान है। इसलिए बिल्कुल वो प्राप्ति को देखते हुए हम अपना शब्द वेस्ट करें। बाबा कहते दुनिया भर की खबरें लेते रहो, ब्राह्मण परिवार की खबरें लेते रहो, क्या फायदा है? पहला ज्ञान यह है कि मुझे क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है। क्योंकि देवता जो होते हैं, इसीलिए देवता है कि जितना उनको बोलना उतना ही बोलेंगे, जितना सुनना उतना ही सुनेंगे, जितना देखना उतना ही देखेंगे। और हम बात दो शब्द की है उसको 100 शब्द में बोलेंगे तो बाकी तो वेस्ट गए। सुनना थोड़ा सा ही है, सुनाने वाला सुना रहा है, इधर की उधर हम सुन रहे हैं, देखने में भी ऐसा ही है। तो फिर ना हम दृष्टि ले सकते हैं ना दे सकते हैं, इतने सारे ढेर सारे में इतना हीरा पड़ा है, आपका गैप हो जाएगा। इसलिए खास तौर पे पैसे का ध्यान, इकोनॉमी तो हर चीज की है, पर आजकल दुनिया में पैसे को लोग वैल्यू देते हैं, पैसे को वैल्यूएबल समझते हैं और चीज को वैल्यूएबल नहीं समझते। मान लो आप सबको कहा जाए आपका वजन दुगना कर दें, कोई देवता आए यहां और कहे आप सबका वजन दुगना करने को तैयार हूं, कौन हाथ उठाएगा? आज के जमाने में कोई उठाएगा कि मेरा वजन दुगना कर दो? कोई उठाएगा नहीं, लोग तो घटा रहे हैं वजन। अच्छा ठीक है, आप कोई कहे आपका पैसा दुगना कर दें तो सब तैयार हो जाएंगे। है दोनों ही वजन, ये शरीर का वजन है, वो बुद्धि का वजन है। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा है कोई चीज रख लोगे तो तुम्हारा अंत समय बजाय तुम बाबा याद आए वो चीज याद आ जाएगी। तो हम सुनते हुए भी वो कहता है तुमको सब कुछ मैं दे रहा हूँ, ड्रामा में तुम मेरे बच्चे हो, मेरे से तो मेरे बच्चों से ज्यादा मैं किसका ध्यान रखूंगा, हर बाबा का बच्चा भरपूर है। फिर भी बिना मतलब के ना जरूरत के आप कोई चीज रख ले तो मेरे वक्त पे काम आ जाएगी, तो बाबा कहता है वही आपको फंसाएगी। ये सोने का पिंजरा है, इसका गेट खुला है, तो आप आ सकते हैं जा सकते हैं। तो हर ब्राह्मण सोचता है गेट खुला है, जब बंद होने लगेगा मैं बाहर निकले आऊंगा। इसी में गड़बड़ है। वो कहता है कि खुला है, अगर तुम्हारी कोई लागत रहेगी तो तुम बाहर निकलने की बजाय उस चीज को भी ले आऊं बाहर, बस गेट बंद। ये एक पक्की बात समझ लीजिए, जितना कोई बात भी हो वो भी मन में नहीं रखनी। देवता लोग अंदर बाहर एक होते हैं, किसी बात को अंदर रखना भी बोझ है। आप देखेंगे किसी से आपकी अनबन हो गई, या आपने किसी से कुछ छुपाना है, किसी को झूठ बोलने की आदत हो जाती है कि जी आज क्लास क्यों नहीं आए अमृत वेले, सीधा नहीं कहते जी मैं मेरे को आलस आ गया था, आज मेरा सिर दर्द था। अब झूठी बोला ना, अच्छा तुम कह दो भी मेरे आज आलस आ गया था तो हल्के रहोगे। अब इस तरह के छोटी छोटी जो झूठे हैं वो फिर हमें अंदर कुछ बाहर कुछ सिखा देती है। आजकल लिफाफा देने का रस्म है, आपको पता है पैसा लिफाफे में देते हैं। अच्छा पहले यज्ञ में था कि भंडारी में डाल दो, दाएं हाथ को ना पता लगे बाएं हाथ को क्या है। अच्छा क्योंकि मैं लिफाफा दे रहा हूं। अच्छा अब लिफाफे में क्या है वो तो खोलने वाले को बाद में पता लगेगा, जब मुझे गिफ्ट मिल चुकेगी, है ना। ऐसे भी है। फिर क्या करते हैं, जरा सी कोई सुविधा मिल जाए, कोई कह जी मुझे थोड़े से इतने पैसे दे दो तुमको मैं बड़ी अकोमोडेशन दे देता हूँ, तो जैसे दुनिया में होता है कि नहीं, वो कहेंगे हाँ चलो। अच्छा बाबा कहता है मेरे को मेरे टेस्ट है, इस दुनिया में आप कुछ भी उठा सकते हैं, कर्म की गति बहुत गहरी है, आप यज्ञ से कुछ भी ले जा सकते हैं, जो आपको सतयुग में मिलना है यहां ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखें मेरे पास कोई चीज है मैं यज्ञ में देता हूं, कलयुगी चीज, तो मुझे जन्म जन्मांतर के लिए उसकी सतयुग में प्राप्ति होती है। मुझे याद है मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था पंजाब में, तो किसी ने कहा अब स्कूटर नहीं चलाना, कार ले लो। मैंने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी ने कहा कार ले लो, हमारी कंपनी से कार उन दिनों आसानी से मिल जाती थी। बाबा ने कहा बच्चे खुशी से ले लो। अच्छा मैंने भोग लगवाया, कार ले ली। अब मुझे पता लगा कि कार के नुकसान क्या होते हैं। अच्छा पहले पहले मैं चंडीगढ़ आया, पहले तो मैं बस में आता था, सब कहते आओ भ्राता जी। अब कार में आया तो उन्होंने कहा ये तो कार वाला है, दूर खड़े हैं, आओ भ्राता जी। अच्छा फिर मैं प्रदर्शनी समझाने गया तो थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कोई बच्चा कार को पत्थर से रगड़ ना रहा हो, मैं बाहर आ गया। फिर देखा ठीक है, फिर गया, फिर मैंने कहा बच्चा रगड़ना तो मैंने कहा तो मुसीबत हो गई, अब फिर उसको खुद चलाऊं, ड्राइवर बन के चलाऊं, पाइप से धुलाई करूं उसकी, मैंने कही तो और मुसीबत हो गई। फिर मैं सब्जी खरीदने जाता था चार दुकानों से पूछकर, अब कार में जाऊं तो मैं कहूं भैया कम करके जी आपसे ही तो कमाना है, अब मैं कार दूर खड़ी करके सब्जी लिया करूं। अच्छा मैंने सोचा तो मुसीबत ले ली मैंने। अच्छा तो फिर मैंने बाबा को लिखा कि बाबा मैं कार बेचना चाहता हूँ, इसमें तो मेरे को डिस्टर्बेंस ही। बाबा ने कहा बच्चे बेच दो तुम्हें विमान मिलेगा। अब सोचने की बात है, तजुर्बा करवा दिया कि कार क्या होती है। हमने गौर से देखा कि कलजू की कोई भी चीज आप ले लोगे वो तो बड़ा जबरदस्त बंधन साथ है। मम्मा ने कहा है हर चीज यहाँ कर्म बंधन में बांधने वाली है। अब आप सोचो कि अगर हम धन का सदुपयोग नहीं करते اس میں اکانومی نہیں کرتے، یا کوئی ناجائز طریقے، کہتے ہیں رشوت لینے والا تبھی لیتا ہے اگر دینے والا دینے کو تیار ہو. تو ہم دیں کیوں؟ ہم پوترتا کو رکھے، تھوڑی سی تکلیف سہن کر لیں، اس میں کیا ہے؟ اس لیے آتما کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، یعنی جس میں آتما شریر سے الگ ہو جائے جلدی سے، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے. اور یہی ہمارے کو اکانومی کرنی ہے کہ کچھ بھی ہے، سمے بھی میرا بچے، سنکلپ بھی میرا بچے، اور ایسے کام میں لگے جو انیہ کو بھی اس سے لابھ ہو. اگر ہم ایک جنا غلطی کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے کہتا ہے اس نے بھی تو کری ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا فالو فادر کیوں کہا ہوا ہے. فالو فادر کہا ہوا ہے، فالو بردر سسٹر نہیں کہا ہوا، پر ہم آسانی سے بڑا بھی تو کر رہے ہیں، بڑوں میں بھی غلطیاں ہو سکتی، تو ہم نے غلطی تھوڑی کاپی کرنی، بڑوں کی اچھی چیز تو کاپی کرتے نہیں. سار یہ ہے، سب چیز کا لاکھ دکھوں کی ایک علاج ہے، بابا ایک نامی رہو، ایک کو یاد کرو، چلتے پھرتے تو ہمارے وکرم وناش ہوں گے، اور وہ ہوں گے تو ہم ہلکے ہوں گے، ہلکے ہوں گے تو ہمارے اندر گن دھارن ہوں گے. نہیں تو گن دھارن ہونا بھی چاہتے ہیں، ہم کروانا بھی چاہتے ہیں، پر اندر اگر اوگن دیکھنے کی بات ہو جائے گی تو دقت ہوگی. سار میں ایک ہوتا ہے گیان، ٹھیک ہے، ہم سب گیانی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا، گیان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ پن ہے، یہ پاپ ہے، اس کو کہتے ہیں گیان. اچھا، آپ کو گیان ہو گیا، سب کو گیان ہے، کون بی کے ہوگا جس کو یہ گیان نہیں ہوگا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ٹھیک کو میں رکھوں، غلط کو چھوڑ دوں. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم کو پتا ہے اس میں میرا فائدہ، اس میں میرا نقصان ہے، پھر بھی نقصان والی چیز میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے گیان ہونا ایک چیز ہے، لیکن جس کو تیاگنا ہے اور جس کو دھارن کرنا، اس کی شکتی چاہیے. آج بھی مما نے کہا ہے کہ کلجوگی لوگوں کو پتا ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی شکتی نہیں ہے. اس لیے ایک تو چھوڑنے کے لیے اس کا بوجھ گھٹائے، بابا سے نے کہا یوگ لگاؤ، پچھلا بھسم کرو. دوسرے ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں وزڈم، ایک ہوتی نالج، ایک ہوتی وزڈم، جو سرسوتی کو کہا گیا گاڈیس آف وزڈم، اور بابا نے کہا وہ برہما کی بیٹی ہے، برہما میڈیم ہے، گیان شیو کا ہے. تو شیو بابا نے ہم کو وزڈم دی ہے. وزڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے برے میں جانا ہی نہیں، کیا کرنا ہے؟ صرف اچھا ہی اچھا. اس کا بھی فارمولہ بابا نے بتایا کہ اور کچھ نہ کرو، سب کے لیے شبھ بھاونا، شبھ کامنا شروع کر دو. یہ نہیں دیکھنا یہ بندہ کون ہے، وہ خراب ہے، اچھا ہے، کہ وہ ہوگا. ہم نے شبھ بھاونا، شبھ بھاونا کرنی ہے آپ کے لیے تو شبھ ہو جائے گا، اور دوسرے کی بھی غلطی نہیں دیکھو گے، وہ ابھی آپ سے کوپریٹ کرے گا. اگر اس کو کہہ دیا تو یہ غلطی کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کی 10 غلطیاں نکال لے گا. اس لیے وزڈم مینز جو مرلی میں آتا ہے اس کو پر آج کی مرلی آج فالو کر لو، کل کی کل. اتنا ہی پروگرام ہم بنائیں کہ جو مرلی میں آتا ہے آج اس کو اچھی طرح دھارن کر لیں جتنا ہو سکتا ہے، کل دوسری آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اکانومی بھی ہو جائے گی. اور مرلی مینز بابا نے کہا ہے کہ بچے مرلی کو مس نہیں کرنا، لاپرواہی سے نہیں سننا، کیونکہ اس میں میں رتن دیتا ہوں. اوم شانتی. تالی بجانے سے آدھا تو وہیں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بابا نے کہا دل میں رکھو.
करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुणगान, एक तेरे ही गुणगान,
एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में, सब सुख तुमसे
Thank you.